के गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन बिचरे हमारे ध्यान। समय प्रचन सार का पेज नंबर 184। कल अपन ने टीका पूरी पढ़ ली थी, अब उसके बाद में थोड़ी सी टिप्पणी है वो पढ़ते हैं, और फिर स्वसमय और परसमय की व्याख्या, समय सार, प्रचन सार और पंचास्तिका, और इन तीनों की टीकाओं में, तीनों की टीका खुद अम्बेडकर ने लिखी है, कैसा कैसा कहां क्या बताया है और उसका निष्कर्ष क्या है, फिर उसे पढ़ेंगे। इस गाथा का भाव आचार्य जयसेन तात्पर्यवृत्ति टीका में आचार्य अमृतचंद के समान ही अत्यंत संक्षेप में स्पष्ट करते हैं। उदाहरण भी अनेक कमरों में ले जाने वाले रत्न दीपक का ही देते हैं। हां, यह बात अवश्य है, वे अहंकार और ममकार की परिभाषा देते हैं जो इस प्रकार है। कल अपन ने बहुत विस्तार से बताई थी अहंकार और ममकार की परिभाषा, उसी को इसमें बांधा है। मनुष्यादि पर्याय रूप में हूं, ऐसी परिणति को अहंकार कहते हैं, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं ना, ये मेरी पर्याय हो सकती है, मेरी है, समझे ना। तो मनुष्यादि पर्याय रूप में हूं, ऐसी परिणति को अहंकार कहते हैं, और मनुष्यादि शरीर, पांच इंद्रियां और उनके विषय और तद्जन्य सुख, ये सब चीजें उन्होंने जोड़ी हैं, ये मेरे हैं, ऐसी परिणति को ममकार कहते हैं। ये विशेषता अमृतचंद से जयसेन की टीका में है, और सब बातें बिल्कुल हूबहू लिखी हैं। उक्त संपूर्ण कथन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहां मनुष्यादि असमान जातीय द्रव्य पर्यायों में एकत्व मत रखने वालों को ही मुख्य रूप से, मुख्यतः पर समय कहा जा रहा है। माने हैं तो सभी का, कोई भी पर्याय में हम बुद्धि रखे, जो अपने बताए ना दृष्टि के विषय में जो जो नहीं है, अथवा जो जो पर्यायार्थिक न्याय का विषय है, उन सब में तो भी वो पर समय ही है, लेकिन वो सब शास्त्रीय भेद हैं, ऐसे जनता में ऐसे दिखाई नहीं देते हैं। जब मैं पंडित टोडरमल पर पीएचडी करता था तो हमारे जो उन्हें बताया ना कि निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, तो वो मेरे से पूछते थे कि ये बस साहित्यिक भेद हैं कि ऐसे लोग भी हैं लोक में। जैसे अपने कहते हैं ना, कल बताया था कि भाई थानकवासी लोग गुजरात में ज्यादा हैं, तेरापंथी लोग इधर ज्यादा हैं, ऐसे निश्चयाभाषी लोग किधर ज्यादा हैं, व्यवहाराभाषी कहां हैं, उभयाभाषी कहां हैं, इनके कोई गांव बसे हैं? जैसे वो गौरव के साथ कहते हैं कि हम थानकवासी हैं, वे गौरव के साथ कहते हैं कि हम तेरापंथी हैं, है ना। ऐसा कोई है कहने वाला गौरव के साथ कि हम व्यवहाराभाषी हैं? यानी कोई इन नामों को स्वीकार नहीं करता। तो वो कहते हैं ये तो शास्त्रीय नाम हुए। जैसे अपन कहते हैं गोमन साल में 363 मिथ्यात्मत्व, तो उन्हें कैसे इतने प्रकार के अज्ञान, इतने प्रकार के, वो जोड़ जाड़ करके उनका उनमें गुणा करो, वो ऐसे निकाल के 363 भेद बता देते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं बता सकते हैं कि ये हैं। माने हम ही सब लोगों में सब निश्चयाभाषी, व्यवहारावासी, उभयाभाषी सब होते हैं, तो इनको वो कहते हम प्रैक्टिकल नहीं मानते, ये तो सैद्धांतिक भेद हैं। ये माने ऐसे भेद नहीं है कि जिनने जगत में ऐसा स्वरूप ले लिया हो कि जिनके नाम पर एक अलग धर्म खड़ा हो गया हो, ऐसा तो ऐसे ही वो कहते हैं कि ये जो हैं देह में एकत्व बुद्धि वाले, ये वाले, ये वाले, ये सब सैद्धांतिक भेद हैं। तो बाकी केवल ज्ञान से रहत आत्मा, फलान से रहत आत्मा, अब कहेंगे वो सद्गुणी हानि वृद्धि से रहेगा। अब ये कहां समस्या है? माने ये कौन है, एक भी आदमी ऐसे कहे कि सद्गुणी हानि वृद्धि से आत्मा सहत है, कि रहत है, ऐसा किसी को विकल्प या पक्ष है या जिसका आग्रह हो उसे। अभी थोड़ा बहुत पढ़ लिया हो अध्यात्म और वहां से किसी पक्ष में पड़ गया हो, वो एक अलग बात है। तो ऐसे वो तो शास्त्रीय भेद हैं बहुत से, और एक प्रैक्टिकल है। जितने भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं, श्रेणी पंचेंद्री तो हैं ही, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली भी, ये केंद्रीय भी, उसमें भी टोडामल जी ने सिद्ध किया ना चौथे अध्याय में 76 पेज पे है शायद, क्या कि उनकी भी देह में एकत्व बुद्धि बनी रहती है। कि कैसे बन जाती, कैसे हो जाती है? तो कहते उन्हें सबसे नजदीक का परद्रव्य यही दिखाई देता है। स्पर्शन इंद्री है ना, स्पर्शन इंद्री का जो विषय है, इसलिए उसी में अपनापन कर लेते हैं, क्योंकि जो जानेगा उसी में तो अपनापन करेगा। जो हमारे ज्ञान का ही विषय नहीं बना, हम उसमें अपनापन करें क्या? हम क्या चाहते हैं कि हम बदल के सम्मादृष्टि हो जाएं, परे हैं ही नहीं। अरे सम्मादृष्टि माने कोई वही वस्तु है जिसमें अपनापन करने का नाम है, और जिसको तुमने अपनापन मान रखा है उससे छोड़ने का नाम है। तो वस्तु का ज्ञान नहीं करोगे आप, उससे छूट के इसमें अपनापन आ जाएगा। कितने उपवास करोगे तो आ जाएगा, कितने का दान दोगे तो आ जाएगा, कितनी तीर्थ यात्रा करोगे तो आ जाएगा। ये कोई मार्ग ही नहीं है, इतना सा मार्ग है कि जिसे तुम्हें अपना है जो अपन, उसमें अपनापन करना है, और जिसमें हमने अपनापन आज तक किया है जो अपने नहीं उनमें से छोड़ना है। तो सीधी सच्ची बात है, इसका मार्ग तो एक ही हो सकता है कि हम इसे गहराई से जानने की कोशिश करें बस। कि और सहायक के रूप में तो होंगे, क्यों तो उपचार में उपचार जितने लगाना हो लगाते जाओ। कि गुरुजी ने ये बताया तो गुरुजी हो गए, शास्त्र में ये लिखा था तो शास्त्र हो गया, और ये गुरुजी ये विद्यालय नहीं होता तो ये पढ़ाते नहीं तो ये विद्यालय हो गया, और जयपुर नहीं होता तो जयपुर में विद्यालय नहीं होता तो जयपुर हो गया, और जयपुर हिन्दुस्तान में है तो हिन्दुस्तान हो गया। जितने लगाना हो लगाते जाओ, क्यों ये सब सहयोगी है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे उपचार में उपचार तो कितने ही लगाते जाओ, लेकिन असली चीज सिर्फ इतनी है। क्या है? अज्ञान कितना सा है कि मैं अपने को नहीं जानता हूं, और अपने से भिन्न जो पर पदार्थ हैं, अब वो कितने हैं उनके डिटेल नहीं जानो तो भी एक थोक के भाव ही काम हो सकता है। जिन जिन में मैंने अपनापन कर रखा है ये सब, अब जो संबंधी विकल्प हो आपको देह संबंधी विकल्प है इसलिए उसकी बात करते हैं, केवल ज्ञान संबंधी विकल्प है ही नहीं, सद्गुणी हानि वृद्धि संबंधी विकल्प है ही नहीं। जब बाल की खाल निखारेंगे तब ये भी बता देंगे सद्गुणी हानि वृद्धि दृष्टि के विषय में है कि नहीं है। लेकिन मेन मुद्दे की बात तो ये है, हमारी समस्या ये थोड़ी है, वो तो हम एक सेकंड में स्वीकार कर लेंगे और हमारा काम हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता ना, क्योंकि हमारा एकत्व होते तो इस मनुष्य पर्याय में है। इसलिए सारा उपदेश का आधार सभी आगमों में इस मनुष्य पर्याय की मुख्यता से ही है। देखो मनुष्य माने मनुष्य देवनार की सब जो जिस पर्याय में है, अपन इस पर्याय में है इसलिए अपन मनुष्य की बात करते हैं। जो लोग इन गाथाओं की व्याख्या करते समय केवल ज्ञानादि पर्यायों से भिन्नता पर बल देते हैं, उन्हें इन गाथाओं और इनकी टीकाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आचार्य अमृतचंद्र स्वयं इस बात पर विशेष बल दे रहे हैं कि जीव पुद्गलात्मक असमान जातीय द्रव्य पर्याय ही सकल अवद्याओं का मूल है। कल अपन ने पढ़ा था ना मूल में, सकल अवद्याओं का मूल क्या है? असमान जाति द्रव्य पर्याय है, देखो ना। तात्पर्य यह है कि श्रद्धा ज्ञान और चारित्र में जो कुछ भी विकृति हुई है, अभी तो मैं अकेली श्रद्धा की कह रहा था, उसने तीनों की लिखी, तीनों में जो भी विकृति हुई है, अविद्या रूप प्रणमन हुआ है, उन सबका मूल असमान जातीय द्रव्य पर्याय में एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि ही है। तो इतनी सी बात है कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मनुष्य कहो मैं हुकुमचंद नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं भारतीय नहीं हूं, ये सब लगा लेना इसमें, इसमें एक में सब आ गया, जितना आना लाना हो ले जाना, बस इतना ये मैं हूं इतना सा अज्ञान है और ये मैं नहीं हूं इतना ज्ञान है, बस इसमें इसमें से अपनापन छोड़ना है और उसमें अपनापन लाना है। अब एक थोड़ी समस्या बीच में है जो आपको लोग कहेंगे कि नहीं साहब इसके बिना जिद कह दिया वो कह नहीं है, कि जब हमने कहा है इनको छोड़ना तो ये तो हमें दिख रहा है, जिनको हमने अपना माना है वो तो हमें दिख रहा है, हमने कोई वैसे ही नहीं मान लिया है। अब तुम जिसको अपना मानने के लिए कहते हो वो तो हमें दिखते ही नहीं, तुम किसको अपना मान लें, तो तुम्हारे कहने से हाँ हमने मान लिया इससे तो ही काम हो जाएगा, वो हमें दिखना चाहिए ना, तब हम उसमें अपनापन करें। श्री कृष्ण ने उद्धव को गोकुल में भेजा था गोपियों को समझाने के लिए, गोपियां भक्ति मार्गी थी, उनके यहां जैसे अपने निश्चय व्यवहार चलता है ना ऐसे उनके यहां चलता है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, और उद्धव ज्ञान मार्गी थे और श्री कृष्ण साधवादी थे समझ लेना, क्योंकि वो उद्धव को भी समझाना चाहते थे और गोपियों को भी समझाना चाहते थे, इसका मतलब उन दोनों मान्यताओं को नहीं मानते थे और दोनों के बीच में जो कुछ है उसे मानते थे। तो उन्होंने कहा कि इनको वहां भेज दो तो या तो यही समझ जाएंगे या वो समझ जाएंगे क्या। तो उनने उन्हें समझाया तो बहुत समझाया, मैं तो एक वाक्य के लिए इतनी बात आपसे कह रहा हूं कि भी गोपियां कहती हैं बहुत मार्मिक शब्द है कि साहब हम तो आपकी पूरी बात मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपको हमारे भगवान जो श्री कृष्ण है उनने भेजा है और वे हमारे सब कुछ हैं और आप उनके दोस्त हो तो हमें किसी से कुछ नहीं पूछना, हम आपकी बात सब मानने को तैयार हैं, लेकिन हमारी एक प्रॉब्लम है। कि क्या प्रॉब्लम है? कि तुम अरूपी का रूप देखने को कहते हो, अरस का रस देखने को कहते हो, यही शब्द है वहां क्या? तुम खुद ही कहते हो कि हमारा भगवान आत्मा अरस मरूप मगंधम अव्यक्तम चेतना गुण समंधम, अरस है अरूप है अगंध है स्पर्श है, ऐसे ही उनके यहां वेदांत में कहा है कि तुम कहते हो कि अरूप का रूप देखो, क्योंकि उनका जो भगवान है ना वो जो अव्यक्त से अपने प्रकाशित ध्रुव है ना, ऐसे वे भी ऐसे शुद्ध ब्रह्म मानते हैं, वो शुद्ध ब्रह्म में ना रूप है ना रंग है। अज श्री कृष्ण का अवतार हुआ ना तो अवतार आता है तो रूप रंग वाला उनके साथ खेलता है हंसता है ऐसा है, तो एक तो इसको भगवान माने अवतार को, और एक अवतार कहते वो भगवान, तो तुम कहते अरूपी भगवान का रूप देखने को कह रहे हैं, जिसमें रस नहीं है उसका रस चखने को कह रहे हैं। अब हम सब बात मानने को तैयार हैं लेकिन हम अरूप का रूप कैसे बनाए कैसे देखें, हमने बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं दिखता, माने हमारी गलती नहीं है, हम तो आपकी आज्ञा बात सब मानने को तैयार हैं। तो ऐसे हम नहीं कह सकते हैं, मैंने अपनी गोपियां नहीं कह सकती हैं, मतलब कोई भी आदमी मतलब जो पक्ष है जनता का पक्ष है कि साहब हमसे आप उस अरूपी आत्मा ये वृद्धशील संयम हम पालते हैं और थोड़ा उससे जो उसमें संतुष्ट हैं कि हमको स्वर्गाधिक मिल जाएगा और हमें भरोसा भी है, अब तुम वो सब छुड़ाना चाहते हो हैं? अब तुम कान्ना के शिष्य हो, किसके कान्ना के कान जी स्वामी जो है ना ये गुजरात में इनके कान्ना ही बोलते हैं, ये श्री कृष्ण के ही नाम पे नाम रखा गया है, इनके मां बाप ने श्री कृष्ण के नाम पे ही नाम रखा है, राम जी कान जी ये सब जो है ना राम और कृष्ण के ही नाम हैं। अब उनने भेजा है तो हम उनकी बात कैसे टाल सकते हैं, लेकिन हम क्या करें और अरूप का रूप कैसे देखें, वो त्रिकाली तो भगवान आत्मा तुम्हारा हमें दिखाई तो देता नहीं है, हम उसमें अपनापन कैसे करें बोलो। तो एक एक, एक समस्या है उसमें, क्यों उस सब उससे हटा के इसमें हमको अपनापन करना है, लेकिन वो हमें दिखना चाहिए। इसी का जवाब है कि वो आत्मानुभूति पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता है। माने वो तुम्हें आत्मा दिखना चाहिए, दिखेगा तभी तुम्हारी श्रद्धा बदलेगी। अब इसमें एक चक्कर है, देखो परमात्म समझना ये कि कैसे दिखेगा। अब तुमने ऐसा समझ लिया कि हमें जैसे जैसे ये किताब दिख रही ना, अथवा जैसे हमारा ये दिख रहा ऐसा दिखेगा। ऐसे कोई खोजने की कोशिश करते हो तो वो तो कैसे दिखने वाला है। वो अरूपी में के रूप को देखने की तुम कोशिश करते हो, कैसे दिखेगा। तो क्या करें, हम समझा रहे ना, आगम समझा रहा है, गुरु समझा रहा है, भगवान की दिव्य ध्वनि में आ रहा है, तो देव साध गुरु से समझ कर अपने ज्ञानोपयोग में उसको देखो कि दिखेगा। बहुनी बोलो दिखेगा कि कैसी बात करते हो। अरे भगवान को दिखा क्या नहीं दिखा। यदि वो अरूपी दिखता नहीं होता, सुनना बहुत मार्मिक बात है, नोट करने जरी, दिखता नहीं होता तो अनंत सिद्धों और अरहंतों को कैसे दिखा। एक पॉइंट। और दूसरा कि बाकी के जो द्रव्य हैं आत्मा को, जो पुद्गल को छोड़कर रूपी द्रव्यों को, तो वे कोई नहीं दिखते, तो उनकी सत्ता का अस्तित्व तो कैसे होता। फिर तो केवली ज्ञान को जो प्रत्यक्ष है क्या नहीं, आकाश काल धर्म अधर्म, मुझे अमूर्तिक जो पदार्थ हैं, माने जिनमें रूप नहीं है, वो पदार्थों की सत्ता जानी जाती है ना। केवली भगवान ने देख के कही है ना, और हमने भी स्वीकार की है ना, वो सच्चे दिल से की है कि कभी ऐसा संशय भी होता है। सोचना जितने दिन से तुमने ये बात स्वीकार की है कि धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य हैं, ऐसे ऐसे हैं, असंख्यात गुण वाले अनंत गुण वाले हैं, असंख्यात प्रदेश वाले हैं, तो एक आध दिन शंका हुई कि हैं कि नहीं है। सच बोल नहीं हुई ना, तो आत्मा में क्या होती। ऐसे ही दिखेगा, ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि अरूपी आत्मा इन चक्षु रूपी इन चक्षुओं से, चमड़े की चक्षुओं से नहीं दिखेगा। समझ में आया ना। अब तुम्हें मानना नहीं है और वैसे देखना ही नहीं है, कुछ सही नहीं करना है उस दिशा में, तो दिखेगा कैसे फिर बोलो। उधर को मोह ही नहीं करना है, तुम तो उस आत्मा को भी खोजोगे तो ऐसे ही रूप रंग में ही खोजोगे। हैं क्यों। अच्छा ये बता दो, ठीक है हमें आत्मा दिखेगा तो वो सांवला दिखेगा कि गोयला, वो दक्षिण भारत जैसा दिखेगा कि उत्तर भारत जैसा, वो अंग्रेजों जैसा दिखेगा कि अफ्रीकी जैसे जैसा, हफ्सियों जैसा। अब तुम इन्हीं रूपों में खोजना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो तुम कितनी कोशिश करना नहीं दिखेगा। यानी स्पष्ट शब्दों में मैं क्या कहना चाहता हूं, आगम से, युक्ति से, गुरु उपदेश से तुम्हें आत्मा के बारे में सम्यक निर्णय करना पड़ेगा, और उस निर्णय पर बहुत मजबूती से दृढ़ होना पड़ेगा, उसमें ही अपना सर्वस्व मानना पड़ेगा, तब उस रुचि के जोर से वो आत्मानुभूति भी होगी। वो होगी तो वहां तुम्हें आत्मा दिख जाएगा, इस धोखे में मत रहना। ये और चक्कर है, समझ में आ रहा ना। इसको समझाना बहुत कठिन है कि क्या दिखेगा। समझ गया ना। अब जैसा दिखेगा स्वरूप है वस्तु का, वैसा तुम्हें दिखना मानना नहीं है, तो उसके आधार से श्रद्धा को पलटना नहीं है। श्रद्धा तो कह दी, पहले तुम्हारा ज्ञान हमको बोले कि हां, तब पलटेगी ना। ये तरह छह इसमें। इस पेंच का क्या हल है। इसका ये हल है कि जो तुमने भाग्य से, महाभाग्य से तुमको सच्चा जनागम मिल गया है, सत्य उसके प्रतिपादक मिल गए हैं, सच्ची बात उससे भी महाभाग्य से तुम्हारे ख्याल में आ गई है, समझे ना, अब व्यर्थ की उस पर शक मत करो। तुम्हारे हाथ में कोहिनूर है और कहीं ये कांच का टुकड़ा टुकड़ा हुआ तो ऐसा झूठा विकल्प करके अपने को दरिद्र मत समझो, क्योंकि इसमें से आत्मा का अनुभव जिसे बोलते हैं हम सम्मा दर्शन होने के पहले, जो जितना होना होगा वो इसमें से ही होगा, यही मार्ग है। तो हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ कोई चिंता की बात नहीं है, तुम्हें पता चल जाएगा, पता चल जाएगा मैंने तुम्हें पक्का भरोसा हो जाएगा। और क्या पता चल जाएगा, तुम जाकर समझ लो केवल ज्ञान जैसा दिख जाएगा। नहीं नहीं, पंडित टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बहुत खोल खोल के ये सब बातें लिखी हैं, मैंने आप लोगों को बताई भी है। और यहां पर आपने वो एक किताब दी है, क्या नाम है उसका, रहस्यपूर्ण चिट्ठी का रहस्य, रहस्यपूर्ण चिट्ठी का, उसमें भी देखना पढ़ना। उसमें जो मैं बात कह रहा हूं वो आप तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। और देखो आचार्य अमृतचंद स्वयं इस बात पर विशेष बल दे रहे हैं कि जीव पुद्गलात्मक असमान जाति द्रिपर्याय ही सकल अविद्याओं का मूल है। माने सबसे पहले तो ये कहते हैं कि बेटा तुमने जिसको निज मान रखा है इस असमान जाति द्रिपर्याय में, पहले ये नक्की करो कि ये मैं नहीं हूं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं क्या हूं उसमें ही दिक्कत है। उसके लिए आपको दिखना चाहिए, बारह की समस्या तो उसकी ही है ना। क्यों कहते मैं तो बाद में छोड़ूंगा, कि बात तो तुम सच्ची कहते हो वो बाद में ही छूटेगा, तो भी विकल्प ज्ञान में, श्रद्धा में, भाई परिणति में, वाणी में, इनमें पहले छोड़ना पड़ेगा, होगा तो सब बाद में ही, ख्याल में आई ना। तात्पर्य यह है कि श्रद्धा ज्ञान और चारित्र में जो कुछ भी विकृति हुई है, अविद्या रूप प्रणमन हुआ है, उन सब का मूल असमान जाति द्रव्य पर्याय में एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि ही है। बस समझ लो भाई, अब और यहां ज्यादा खोज बोझ नहीं करो, ये नहीं करो कि मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैं ये रह गया, मेरा ये रह गया, यदि साहब बूथ उनको मैंने नहीं जाना, उनको मैंने नहीं माना, तो ये जैन दर्शन में है ही नहीं कि वो साधारण व्यक्ति से लेकर उस सिद्ध भगवान तक परद्रव्य हैं, जो उनमें से तुम किसी को जानो या नहीं जानो उससे तुम्हारा इस सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र का मोक्ष मार्ग का कोई अंतर नहीं आता है ना। कुंदकुंद आचार्य को अपन जानने लग गए, थोड़ा थोड़ा अमृतचंद को जानने लग गए, कुंदकुंद से लेकर अमृतचंद से लेकर और आज तक 2000 वर्ष में और लाखों ऐसे दिगंबर मुनिराज हुए होंगे ना कि जो कुंदकुंद जैसे ही आत्मज्ञानी होंगे, समझ में है ना। और हम उन्हें नहीं जानते हैं, नहीं जानने से हम मिथ्या दृष्टि हैं, इस वजह से हम मिथ्या दृष्टि हैं। उन सब एक एक को जानना पड़ेगा, क्यों कुछ नहीं, तुम उन्हें जानो तो बहुत बढ़िया, नहीं जानो तो बहुत बढ़िया, बखड़ी है, समझ में है ना। वो है ही नहीं इसमें शर्त, कहां लगी शर्त, शर्त तो अपने आत्मा की लगी है कि जिसमें अपनापन करना है, इन सब में से तो अपनापन तोड़ना है कि भाई अपने अनंत भगवान मंदिर में मूर्ति विराजमान है जिनकी, जिनकी अपन रोजीना पूजा करते हैं, इनसे अपन को क्या करना है बोलो, क्यों कि ये मैं नहीं हूं, ये करना है, अरे क्या कह रहे, ये करना है, ये अर्घ है उनको, क्या क्या कि तुम मैं नहीं हूं, मैं तुमसे जुड़ा तत्व हूं, ज्ञानानंद स्वभावी, क्योंकि जब मैं भेद विज्ञान करता हूं होता है मुझे भेद विज्ञान, तब तुम्हारा नंबर पर में आता है। और ये जो मेरा देह है ना हर मास का, खून का पीप का, कितने कितने नवद्वार बहे घिनकारी, इससे भी तुम दूर हो। मैं दूरी है ना, ख्याल नहीं ना, तुम इससे भी दूर की श्रेणी में आते हो। तो तुम्हें तो ये नहीं हूं ये जानना है। तुम्हें उन सब मुनिराजों को कुंड कुंड से लेकर आज तक जो हुए हैं, उन सबको वे मैं नहीं हूं, तुम्हारी शर्त तो सिर्फ इतनी है। और इसके लिए किसी की उपस्थिति, तुम्हारे ज्ञान में भी किसी की उपस्थिति की जरूरत नहीं है। समझ रहे ना, हम ज्ञान में पहले उपस्थित करें और फिर माने गए मैं नहीं हूं, क्या जरूरत है? बोलो, इस विकल्प की क्या जरूरत है? किसी दूसरे को नहीं मानने से हमारा कोई विकृति नहीं हुई है, हमें कोई, हम इसी पाप से बहुत घबराने लगते हैं। देखो, स्वसमय और परसमय का तुलनात्मक विवेचन, समय सार की आत्मख्याति टीका, प्रवचन सार की तत्व प्रदीप का टीका और पंचाश टीकाएं की समय व्याख्या टीका के आधार पर समय सार अनुशीलन भाग एक में बहुत ही विस्तार से इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। अभी अपने पढ़ते हैं कि चार चार पेज का होगा, चार पेज हैं, हाँ चार पेज हैं, है ना? और ये बहुत मार्मिक विषय है। स्वसमय और परसमय, स्वसमय माने सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी और परसमय माने मिथ्या दृष्टि संसार मार्गी। अब इनका क्या वास्तविक स्वरूप है ये बात बताइए तो कितनी प्रयोजनभूत बात है, है? कैसा जब जल्दी आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ के कहां जाना है? आगे बढ़ के जल्दी कहां जाना, यही तो समझना है। तो आगे भी यही समझाएंगे, इसलिए कोई जल्दी नहीं। वो बहुत मेहनत कर करके, वो सब जो समय सारण शीलन लिखा था ना, तब मेहनत पूरी कर ली थी और तब वो लिख दिया था सब। कब मालूम? कब? कौन सी गाथा में है? दूसरी गाथा, माने इसे कहते हैं ना कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े थे। समय सारण शीलन लिखना शुरू किया, क्यों? मंगलाचरण की एक गाथा हुई नहीं कि एक विषय आ गया इतना कठिन। ये कब की घटना है? हैं? बोलो बोलो। हाँ, 91 की, 1991। कितने हुए? 25-30 वर्ष हो गए ना, कितने हो गए? तब लिखना शुरू किया था ये। गुरुदेव का स्वर्गवास हो गया था शायद, हाँ वो 8-10 साल हो गए थे, हैं? गुरुदेव के स्वर्गवास को 8-10 साल हो गए थे, क्योंकि गुरुदेव का, जब गुरुदेव थे तब तो धर्म के 10 लक्षण लिखा था, फिर किरमद पर्याय लिखी थी, वो तो गुरुदेव ने देखी है, फिर मैंने नए चक्र लिखा था, तो नए चक्र भी आधा पर्दा गुरुदेव ने देखा है। जो असली मुद्दे वाली बातें थी, जो मतभेद था सोनगढ़ वालों गैर सोनगढ़ वालों का, वो सारा प्रकरण लिखा जा चुका था, वो देखा है निश्चय व्यवहार का, आगे का नहीं था, आगे का बाद में लिखा है। और जब वो खत्म हो गया नए चक्र, और उसके बीच में 12 भावना एक अनुशीलन लिखा था, क्योंकि नए चक्र बहुत कठिन पढ़ने लग गया था, अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि भाई ये लोगों की समझ में नहीं आएगा, दिक्कत है, बीच में रोक दिया उसे, फिर सरल विषय चलाओ कोई, तो 12 भावना अनुशीलन चलाया, फिर वो 13 महीना तक वो चला, फिर उसके बाद फिर नए चक्र शुरू किया, है? और जब वो खत्म हो गया तब वे फिर समय साल लिखना शुरू किया। तो इनमें सब में 10 साल लग गए, काय में किरमबद्ध पर्याय, धर्म के 10 लक्षण, 12 भावना अनुशीलन और नए चक्र, इन सब में 10 साल लग गए। और फिर उसके बाद समय साल लिखना शुरू किया तो 10 साल उसमें लग गए। شروع میں ہی دوسری گاتھا میں، لیکن میں نے اس میں محنت، اس میں ہی نہیں جو جو وشے آئے ہیں وہ جو وبادست آئے ان سب پہ بھی قلم چلائی، اور پوری چھمتا سے، پوری مطلب آگم کو آدھار میں رکھ کر فل کانفیڈینس سے، پوری اتھارٹی کے ساتھ. جب کبھی زیادہ ودیش میں لوگ کئی بحث کرنے لگتے ہیں نا، یہ کرنے لگتے ہیں نا، پھر زیادہ بات ہے، تو پھر میں کہتا ہوں ان سے، کبھی کبھی انہیں ایسا لگتا ہو کہ ابھیمان نہیں ہے، آپ کس سے بات کر رہے ہیں معلوم آپ کیا کیا بول رہے ہیں، کیا دیکھا ہے آپ نے، میں جین درشن کی اتھارٹی ہوں، ایسا بولتا ہوں کیا میں نے کتنا ادھین کیا ہے، اتنی محنت کی ہے، اور تم کچھ نہیں، دو دن دیکھا نہیں ہے، کچھ بھی آ گئے گپیں لگا رہے اور میرا سمے خراب کر رہے، اور ایسے بول رہے ہو جیسے تم بہت کچھ جانتے ہو. تم بتاؤ تم نے کیا پڑھا، کیا دیکھا اس وشے میں، تم نے کہاں کہاں کیا دیکھا، تمہیں مجھے پتا لگے کہ تمہیں کتنا آتا ہے. بہت سے لوگ میرے سے پوچھتے ہیں آج بھی، کیا پوچھتے ہیں کہ صاحب مجھے آپ بتائیے کہ میں کائے کا سوادھیائے کروں. روزانہ ایک نہ ایک آتا ہے، یہ پوچھتا ہے. میں کیا کہتا ہوں، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ تم نے ابھی تک کائے کائے کا سوادھیائے کیا ہے، تو پھر میں اس کے حساب سے بتاؤں نا. کیوں، تم نے کچھ بھی نہیں کیا ہو تو یہ کہوں گا بال بال پاٹھ مالا میں پڑھو، یہ تم نے کچھ کیا ہے تو اس کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کیا پڑھنا چاہیے، ایسے تھوڑی. تو یہ جو بات میں آپ کو پڑھانا بتا رہا ہوں وہ فل اتھارٹی سے سمجھے کیا یہ بتا رہا ہوں. پھر خوب سوچنا سمجھنا، سوچنا سمجھنے کے لیے، سوچنا سمجھنا نہیں اور چپ چاپ مان لینا ایسا نہیں. جب تک تم اس پہ خوب سوچ سمجھ گئے، تم اس کو نہیں سمجھو گے تب تک یہ تمہاری نہیں بنے گی، میری رہ جائے گی. کبھی دادا نے ایسا لکھ دیا، ایسا بتا دیا، تمہاری جب بنے گی، یعنی کیا کہہ رہا ہوں میں سنو، کہ جب تم سے کوئی سو سمے پر سمے کے بارے میں پوچھے تو تم چھوٹتے یہ نہیں کہنا کہ دادا نے ایسا کہا ہے اور ایسا لکھا ہے وہاں لکھ دو. تم سمجھانا پوری طاقت سے، اور انت تک بھی تمہیں یہ نہیں کہنا پڑے، کیا سمجھ آئی نا، یعنی تمہیں یہ کہنا پڑتا ہے تو سمجھ لو کہ تم اسے سمجھا نہیں پائے. کیا سمجھے، ایسے ہی ارتھ ہوا نا. تو پھر آپ نے گواہ صفائی کی ضرورت پڑ گئی، پھر پرمان کی ضرورت پڑ گئی، یعنی وہ نسنک نہیں ہو پایا. اس لیے بہت، اس لیے سمجھنا بہت مارمک پروجن بھوت پرکرن ہے. اور ویسے تو میں نے تمہیں بتا دیا کہ اس کا جواب تین طرح سے آتا ہے، وہ تین طرح سے کیوں آتا، کیسے آتا، وہ سب اس میں بتائیں گے. کون سے تین طرح؟ ایک چوتھے گنستان سے اوپر سدھ تک سب سوسمے اور متھیا دشٹی پر سمے، دوسرا ساتویں گنستان سے اوپر سوسمے اور نیچے والے پر سمے، اور اس کے بعد بارہویں گنستان سے اوپر والے، تیرہویں سے اوپر والے سوسمے اور اس کے نیچے والے پر سمے. ایسے تین طرح سے اتر آتا ہے، تینوں کی اپیکشائیں کیا ہیں وہ سمجھنا. اور مول بات، تین میں سے ایک کو یعنی ہمیں نرنے کرنا ہے تو سچی بات یہی ہے کہ چوتھے گنستان سے اوپر سب سوسمے اور اس کے نیچے سب پر سمے، باقی تو اپیکشاؤں سے کیے گئے وششٹ کتھن ہیں. سنو، سمے سار کی دوسری گاتھا تو ہو گیا نا، ہاں سمے سار کی دوسری گاتھا میں درشن گیان چارتر میں استھت جیو کو سوسمے کہا گیا ہے، اور پروچن سار کے میں آتم سوبھاؤ میں استھت جیو کو سوسمے کہا گیا ہے. اب دو، ایک آچاری کی ان نے خود گاتھائیں، ان گاتھاؤں میں لکھا درشن گیان چرتر ہے نا، کیا ہے جیو چرتر درشن نانک تھیم تم جان سسمیم، ہم درشن گیان چارتر میں استھت جیو سوسمے ہے. اور دوسری جگہ کہا گیا ہے کلیئر کہ وہ پروچن سار میں کہ آتم سوبھاؤ میں استھت ہے وہ سوسمے ہے. اب آتم سوبھاؤ میں استھت ہے وہ سوسمے ہے، कि इसमें एक ही आचार्य की दो गाथाएं, तो वो कहते हैं कि ये दो बातें हैं ही नहीं, एक ही बात को दो तरह से कहा गया है। देखो जब एक शादी होती है ना, तो ऐसा है कि शादी होती है एक, वो दिखती है दो। आगे समझना कि नहीं आया, एक लड़का और एक लड़की, इन दोनों की मिलके एक शादी होती है ना, वो एक कहलाती है कि नहीं कहलाती है। लेकिन ये लड़का वाला एक लड़की वाला, एक के यहां से बारात जा रही, एक के यहां आ रही, दोनों के यहां शादी के फंक्शन होते दिखेंगे, तो दिखेंगे दो, है ना, एक लड़का की एक लड़की की, क्लियर हो गई। लेकिन एक लड़का और एक लड़की की होती ही नहीं है, एक लड़का और एक लड़की की मिलकर होती है। आप समझ रहे हैं ना, तो इसमें क्या है कि आत्मा है ना, उस आत्मा में स्थित होने का नाम दर्शन ज्ञान चारित्र है। और दर्शन ज्ञान चारित्र किसका नाम है कि आत्मा में स्थित होने का नाम। तो एक तो जिसमें स्थित होने का नाम है उसको कह दिया आत्म स्वभाव में, और एक में जो स्थित होना है उसको कह दिया, तो बात तो एक ही रही ना, वो दो काम कहां करना है आपको, है ना। आत्मा के स्वभाव में स्थित हो ऐसा कहा, चाहे दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो, दोनों का एक ही अर्थ है। हमें दो काम करने ही नहीं है, कहा जाएगा दो प्रकार से, लेकिन वो होने वाला है एक ही काम, समझिए ना, कि दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना और आत्म स्वभाव में स्थित होना। क्योंकि आत्म स्वभाव में श्रद्धा गुण की तरफ से ये मानना कि ये ही मैं हूं, उसका नाम श्रद्धा गुण की तरफ से आत्मा में स्थित होना है। ज्ञान गुण की तरफ से ये ही जानना कि ये ही मैं हूं, ये ज्ञान गुण की तरफ से आत्मा में स्थित होना है। और वैसे ही आत्मा में जमे रहना, जानते रहना, उसका नाम चारित्र गुण की तरफ से आत्मा में स्थित होना है। क्या इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है? देखो तो उक्त दोनों कथनों में कोई अंतर नहीं है, लिखा ना, मात्र अपेक्षा भेद है। आत्म स्वभाव में स्थित होने का नाम दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना है। श्रद्धा ज्ञान और चारित्र गुण की पर्याय जब आत्म स्वभाव के सन्मुख होकर परिणमित होती हैं, तब दर्शन में दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होते हैं, उसी को आत्म स्वभाव में स्थित होना कहते हैं और उसी को दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना कहते हैं। ठीक है, समय सार की आत्मख्याति टीका में पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने का अर्थ मूल राग देशादि भावों में एकत्व स्थापित कर प्रणमन करना किया है। और प्रवचन सार की तत्वदीप का टीका में पर्यायों में निरत होने का अर्थ मनुष्यादि असमान जाति द्रव पर्यायों में एकत्र रूप से प्रणमन करने पर विशेष बल दिया है। तात्पर्य यह है कि पर समय की व्याख्या में समय सार की आत्मख्याति टीका में मुह राग देश रूप आत्मा के विकारी परिणामों के साथ एकत्व बुद्धि पर बल दिया है, और प्रवचन सार की तत्वदीप का टीका में मनुष्यादि असमान जाति द्रव पर्यायों के साथ एकत्व बुद्धि पर बल दिया है। देखो मनुष्यादि पर्याय अभी इतना व्याख्यान दिया था लंबा चौड़ा कि हमने चंद्राचार्य खुद ये इस पे ही बल देते हैं कि मैं मनुष्य देह हूं। अब वो कहते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना, तो वो पुद्गल कम प्रदेश ठियम तम जान पर संयम, वो कहते पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना, पर समय इसको बोलते हैं वो, क्यों ना अमृत वो के समय सार। और प्रवचन सार वाले क्या बोलते हैं, मनुष्य आदि पर्यायों में एकत्व करना। अब पुद्गल कर्म के प्रदेशों में कैसे स्थित हुआ जाएगा, वो किया अपन को विचार करना चाहिए ना, दोनों एकाध बाती है। तो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में मन पुद्गल कर्म के उदय से जो प्रणमन होता है, माने जो मोहराग देश रूप प्रणमन होता है, उसमें ही अपनापन करना, उसका नाम पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना है। और आत्मा के प्रदेशों में स्थित होना तो कहते अपने में अपनापन स्थापित करना, अपने को अपना जानना, अपने में अभिलीन होना, ये वो समझने ज्ञान चार। तो उसका पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने का मतलब है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। और आत्म प्रदेशों में स्थित होने का दर्शन ज्ञान चारित्र रूप में स्थित होने का अर्थ है सम्मत दर्शन ज्ञान चारित्र। तो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में कैसे स्थित हुआ जाएगा? तो ये कहते हैं पुद्गल कर्म के उदय से जो मोह राग द्वेष के परिणाम हुए हैं, जो स्त्री पुत्र आदि जो कुछ भी तुम्हें मिले हैं, जो भी, उन सब में ही अपनापन करना, अपना मानना और लीन होना, बस इसका नाम भी बता रहे पर समय पुद्गल कर्म का प्रदेशों के स्थित का जी अर्थ है। और कैसे कोई जाके वहां बैठ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, हम तो वैसा देखते हैं कि ऐसा कुछ क्रिया कि पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना, उसका नाम पर समय है। इन दोनों में भाषाई में अंतर है, कोई ऐसा बड़ा अंतर नहीं है। अब जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना, ऐसा लगता है जैसे बराबर ये कोई क्रिया होगी, यहां से उठ के वहां बैठना, स्थित होना, ये तो सब मान्यता का खेल है, ये सब सिर्फ मानने वाली बात है। तो स्थित होना ये तो भाषा का है, क्या करें हम, कैसे बोले, कैसे समझाएं? अपने तुम तो उनकी गोद में जाके बैठ गए, कैसे बोलते कि नहीं बोलते लोग में किसी से है कि तुम तो जाके उनकी गोद में बैठ गए। अब कौन सी गोद में बैठता है, क्या होता है, ऐसा कुछ होता है? कोई किसी की गोद में बैठा है, किसी ने किसी को अपनी गोद में बैठाया है? लेकिन हम ऐसे प्रयोग करते हैं ना, और उसका अर्थ हम समझते हैं कि नहीं समझते हैं? बस आचार्यों की बात नहीं समझते। उनने कहा पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना माने पुद्गल की गोद में बैठ गए, तो उन्होंने उसको ही अपना सर्वस्व मान लिया है? लिख दिया ना, क्या बनारसी दास ने लिख दिया, ये सब है पुद्गल का, टोडम जी ने लिखा है, ये सब है पुद्गल का खेल, इन सोनाई हमारो में। अब उनने उसकी व्याख्या ही नहीं की किसका है, कहाँ का है। उनने वो चीज जिसको हमने अपना माना है, इस मकान को हमने अपना माना है, अब झगड़ा पड़ गया तो ये मकान किसी दूसरे का होगा, उसकी मालकी होगी, उसको हमने माना है, तो अभी किसकी बताएं? हमने इस देह को अपना माना, इसे हम किसकी बताएं? ये हमारी नहीं है तो किसकी है? कभी सोचा? सोचने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं, हमको इसकी रिसर्च नहीं करनी है कि ये किसकी है, हमें तो ये रिसर्च करनी है कि हमारा कौन है। समझ आई ना? हम कहां, हम तो उल्टी जगह घूम गए। अभी हम ये कहते हैं कि देखो तुमने कुछ नहीं किया इस स्मारक में, तुम कुछ नहीं करते हो शांति जी, ठीक है ठीक है, आपकी हम मानते हैं, लेकिन बताओ कि हम नहीं करते हैं तो ये आत्मख्याति कौन पढ़ाता है, तो कौन करता है? कि इसकी समस्या नहीं है कि कौन करता है, तुम ये समझो कि तुम नहीं करते हो, तुम अपनी सोचो कि उसको कौन पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा, तुम अपनी सोचो कि तुम्हें नहीं करना है। यदि मोदी जी नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री तो देश का क्या होगा, इसकी चिंता है कि मोदी जी तुम अपनी सोचो कि तुम क्या करोगे, फिर चाय बेचोगे? एक दफे हमें तुम्हारे हाथ की चाय पीना है, चाय फ्रेस्ट हो जाए तो रेलवे स्टेशन की चाय पीने के लिए। समझ रहे हो ना कि तुम वहां उल्टी तरफ क्यों जाते हो? कि देह मेरा नहीं है तो कौन मेरा है? बता रहे ना, त्रिकाली त्रि भगवान आत्मा तुम्हारा है, तुम्हारा कोई हो इसकी तुम्हें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम अपने में परिपूर्ण तत्व हो। मैंने सबसे पहले ये पंच शब्द लिखे, देखो मैं हूं अपने में स्वयं परिपूर्ण, कोई कमी है ही नहीं। मैंने सुना है, मुझे अन्ना जी ने बताया है, अन्ना जी के पास फोन आया था किसी व्यक्ति का भीलवाड़ा से कि सुधा सागर जी महाराज ने वहां भरी सभा में ज्ञानानंद स्वभावी पढ़ करके बताया और लोगों को कहा कि देखो कितना बढ़िया है, इसमें पूरा जैन धर्म आ गया है, इसकी चार पंक्तियों में पूरा जैन तत्व ज्ञान आ गया। किसी ने सुना होगा वहां, और उसने फिर इनसे फोन किया अन्ना जी ने, अन्ना जी ने मुझे बताया। अभी अन्ना जी यहां हैं, आप जाओ तो उनसे पूछ लेना किसने कहा, मुझे पता नहीं है। क्यों समझ रहे हैं ना, माने मेरे के, मुझे इस बात की खुशी हुई, इस बात की नहीं कि मेरी, मैंने इस तत्व को, इसमें जो बात कही है वो जैन धर्म का सार है, ये उनको स्वीकृत तो हुआ क्या। देखो परमात्मा ये बहुत बात समझ लेना, हम तुम सब 99% तो तत्व की बात करते हैं ना, आत्मा की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, शास्त्रों में से करते हैं ना, चाहे वे मुनिराज हों चाहे अपन हों, यानी इनमें 99% में तो कोई चक्कर ही नहीं है, कोई 1% किसी का कोई स्वार्थ होगा, कुछ करता होगा, कोई कुछ होता होगा, कुछ क्रिया में कुछ उसमें बहुत कुछ होगा, मैं किसी बात का वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो जो हम 99% शास्त्र के आधार पर जहां भी कहा जा रहा है उसको सच्चे दिल से स्वीकार करना अच्छी बात है ना, है? वो बात भी समाज तक पहुंच रही ना, नहीं तो बिल्कुल ठंडा मामला पड़ा रहता है। विद्यानंद जी महाराज तो ये कहते हैं कि हल्ला करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, सेवन बिल को लगा ये हाँ यहां का वहां यही मेला एक वहां ये वहां, देखिए क्यों, क्योंकि नहीं ऐसा लगता है जैन धर्म खत्म ही हो गया ऐसे, मैंने इससे थोड़ा ऐसा लगता तो है कि हम जिंदा हैं। कैसे नहीं बबलू ये क्या कह रहा है मालूम, कि डॉक्टर साहब आप कुछ ना कुछ पंच कल्याण करो, शिविर करो, भाषण दो, शिविर लगाओ, किताबें छपाओ, कुछ 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 ना कुछ करो बस खत्म। क्या देन धर्म कम कम से आ रहे थे, एक मिनट में ऐसा हो जाता है जैसे कुछ नहीं है, नथिंग हो जाता है, बाजार में जाते तो हो ही जाता है, वहां तो तुम्हारा कुछ है ही नहीं है, वहां तो धंधा पानी है जो भी है, रेल में इसमें जहां जा कहां क्या है, जितना तुम करोगे उतना ही है ना। ये आप जा रहे हो नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो उसको समझा रहे हो, खतरा तो वो है कि नमो का मन से जो हो जाएगा वो हो जाएगा, झूठी झूठी ठोकते हो तो झूठी झूठी लगाते हो तो होता जाना कुछ है नहीं, और होना जाना कुछ है नहीं तो देन धर्म के प्रति अश्रद्धा और बढ़ेगी है? ये तुम नहीं, तुम ये कहो कि कुछ नहीं होगा, जैन धर्म ये कहता है तो भी तुम्हारा महत्व कम होने वाला नहीं है, क्यों हम ये बताएंगे कि हाँ कुछ होता है होता है तो महत्व बढ़ेगा। जाओ तुम करो एक नमोकार मंत्र पे प्रवचन, चार व्याख्यान तुम्हारे होंगे नमोकार मंत्र पे, सब कुछ हिंदुस्तान में तुम्हारे बहाने सबको चैलेंज कर रहा हूं, और खूब बताओ कि ये होता है ये होता है, उसका ये हो गया उसका वो ये हो गया, और फिर चार घंटा मैं जाऊंगा मैं बताऊंगा। मेरे अर्थ के शिविर में 7 घंटा मैंने नमोकार मंत्र पे ही बोला, 7 घंटे 7 दिन तक पब्लिक मीटिंग में, देखो किसका मजा आता है। मैं ये कहना चाहता हूं मेरी कीमत नहीं, ये होता है ये होता है ये होता है इसको किसी ने नहीं माना, और मैंने कहा कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता है तो सबके कान खड़े हो गए, ऐसा क्यों मानते हो तुम कि हम ऐसा कहेंगे तो दुनिया हमें मानेगी। आपकी वाणी में ताकत होनी चाहिए, उसके पीछे सत्य का बल होना चाहिए, हैं? बताओ आगम में बता दो कहां लिखा, ना आगम में बता सकते हैं ना युक्ति से सिद्ध कर सकते हैं और या प्रयोग करके बता दो, तीन ही चीजें तो हैं, वे तीनों नहीं कर सकते हैं। हम तीनों कर सकते हैं, आगम भी निकाल के बता सकते हैं, युक्ति से भी बता सकते हैं, और हमें तीन तीसरे में तो कुछ करना ही नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कुछ होता नहीं है। कुछ नहीं होता है, इसके लिए हमें क्या करके दिखाना, बोलो लक्ष्मी। वस्तु का स्वरूप है, नहीं होता है, बस खत्म, नहीं होता, नहीं होता, ये परम सत्य है। कितनी बड़ी ताकत है ये, बोलिए। आप उस ताकत पे बोल रहे हैं, उस ताकत पे आपकी बात चल रही है, चले चलेगी। और कहां है भैया अपना, दोनों कथनों में कोई अंतर नहीं है, मात्र अपेक्षा भेद है। आत्म स्वभाव में स्थित होने का नाम दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना है। श्रद्धा ज्ञान और चार गुण की पर्याय जब तक आत्म स्वभाव के सन्मुख होकर परिणमित होती हैं, तब सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होते हैं। उसी को आत्म स्वभाव में स्थित होना कहते हैं, उसी को दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना कहते हैं। समय सार और आत्मख्याति की टीका में पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने का अर्थ मूल राग द्वेष आदि भावों में एकत्र स्थापित कर प्रणमन करना किया है। राग द्वेष मोह में एकत्र है। और प्रवचन सार की तत्वदीप का टीका में पर्यायों में निरत का अर्थ करते हुए मनुष्य आदि असमान जाति दृढ़ पर्यायों में एकत्र रूप से प्रणमन करने पर विशेष बल दिया है। देखो नए चक्र कौन कौन पढ़ते हैं, जरा हाथ उठाना। हमें एक प्रश्न पूछना है, इसलिए बोलता हूं। देखो सोच सोचना कि इस दोनों में कौन से नयों ने कहा है, किस नये का अंतर पड़ा है। बोलो।
हाँ
समझ में आया, नए चक्र वालों को तो आ गया होगा, बाकी के लोगों को नहीं आया, कोई बात नहीं है। देखो मनुष्य आदि पर्याय, ये मनुष्य आदि पर्याय को हम असद्भूत व्यवहार नए कहते हैं, इनको अपना कहने वाले नए को। और इसके दो भेद होते हैं, उपचरित और अनुपचरित। तो ये अनुपचरित माने, क्योंकि अपन देह वाले नए को अनुपचरित बोलते हैं, स्त्री पुत्र आदि के संयोग को उपचरित बोलते हैं। तो ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए हुआ। और फिर वहां राग आदि को अपना कह रहे हैं, तो राग आदि को अपना कहने वाला सद्भूत व्यवहार है, और उसका उपचरित भेद है। अनुच्चरित भेद में तो केवल ज्ञान आदि को कहते हैं, निर्मल पर्याय को कहते हैं, समझ आए ना। तो इसमें लिखा है, मेरे ख्याल से इसमें भी लिखा है, बाद में आएगा, लेकिन इन दोनों नयों का फर्क है। एक आचार्य ने वहां ये नये लगाया, दूसरे आचार्य ने वहां दो नये लगाया। तो ऐसी चाय जो उनमें चाय जहां लग जाता है, लग जाता है, जहां लगता है वहां लग जाएगा, ना नहीं लगेगा नहीं लगेगा। देखो तात्पर्य यह है कि पर समय की व्याख्या में समय साध की आत्मख्याति टीका में मूल राग द्वेष रूप आत्मा के विकारी परिणामों में के साथ एकत्र बुद्धि पर बल दिया है। और प्रवचन सार की तत्वदीप का टीका में मनुष्य आदि असमान जाति द्रव्य पर्यायों के साथ एकत्र बुद्धि पर बल दिया है। नीचे ही तो लिखा है, देखो आत्मख्याति में उपचरित सद्भूत व्यवहार नय के विषय को लिया है, और तत्वदीप का टीका में अनुपचरित अशुद्धवत के व्यवहार नय को विषय को लिया है। राग आदि के साथ एकता की बात उपचरित सद्भूत व्यवहार नय कहता है, और मनुष्य आदि के साथ एकता की बात अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय कहता है। नीचे लिखा है क्लियर, इसमें सबको ही बता देना चाहिए था, बता देते कब, यदि घर से इसे पढ़ के आते। तो घर से तो कोई पढ़ के आता ही नहीं है। निश्चय रत्नत्र से रहित जीव को मिथ्या दृष्टि ही होते हैं जो नहीं, और निश्चय रत्नत्र से परिणत जीवों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। वे तीनों भेद चारित्र की पूर्णता अपूर्णता के आधार पर घटित होते हैं, क्योंकि सम्मत दर्शन तो अपूर्ण होता ही। अब ये क्या मामला चल रहा है, अभी तक अपन ने इस विषय को स्पष्ट कर दिया कि स्वसमय और परसमय इन दोनों शास्त्रों में क्या क्या परिभाषाएं दी, और वे दोनों एक क्यों हैं। اب کیا شروع ہو رہا ہے کہ وہ جو میں نے بتایا تھا چوتھے گنستان ساتویں گنستان اور بارہویں گنستان کا فرق, تو اب وہ بات بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ کہاں سے کس کو کیسا گننا. تو کہتے ہیں کہ دیکھو سمیہ درشن تو چوتھے گنستان میں پورا ہو جاتا ہے, ادھورا ہوتا ہی نہیں. اس لیے سمیہ درشن کی اپیکشا لگائیں گے سو سمے پر سمے تو بس یہ ایک ہی ہے جو میں نے بتایا نا پہلے. اب یعنی ہم چارتر کی اپیکشا لگائیں تو چارتر میں یہ بھید پڑتے ہیں کہ سو تو ساتویں کے بعد شدھوپیوگ ہوتا ہے تو شدھوپیوگیوں کو سو سمے کہنا اور اشدھوپیوگیوں کو پر سمے کہنا, تو وہاں وہ اپیکشا لگ جائے گی. سمجھنے کی لگائیں تو چوتھے کی لگ ہی جائے گی, اور پھر پورن چارتر کہیں گے اور انت سدھ کی لگ جائے گی. پھر پورے سنساریوں کو بھی, وہ تو کہہ رہے ہیں اکیلے سدھ سلا میں جو ختم ہی ہو گئے. ارے بھید تو ہم کتنا ہی کر سکتے ہیں نا, کہاں کہاں سے ہیں. تو پھر تم سمے دشیوں کو بھی پر سمے کہہ دو گے. پھر پنچاسی کا بیچ میں آیا, میں آئے گا اپنے آپ آئے گا. کیوں کہ گھبراؤ نہیں, یہ سوکھم پر سمے کی بات ہے, ذرا سوکھم بات ہے, کچھ نہیں. مطلب ایسی ایک سوکھم اپیکشا کی دشٹی سے یہ کتھن کر دیا ہے.
स्वरूपि अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन